समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश विदेश के समाचार जानेंगे, क्षेत्रीय संवाददाताओं से रूबरू होंगे, खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी हमारी नजर रहेगी। तो बने रहे हमारे साथ। आज के अंक में मैं हूं प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। हेलो अनुजा।
हेलो, नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका। Priyanka, the festival of vibrant colours is still a few days away, but for many of the cricket-loving Indians, it started the day India brought home the Champions Trophy last Sunday. It was interesting to see the headline in one of the dailies, which read, Rohit Sharma, Virat Kohli kick off Latmar Holi early with the celebration of Champion Trophy 2025 title win.
बिल्कुल, बहुत ऐसे अखबारों में बहुत ही रोचक हेडलाइंस थी, जैसे कि होली से पहले ही जीत के जो रंग है उनसे सराबोर कर दिया पूरे देश को, और होली से पहले दिवाली मनाई गई। तो मतलब बहुत ही शानदार जीत दर्ज की और दिखा दिया कि अब हम प्रेशर में भी कितना अच्छा खेल सकते हैं।
एब्सोल्युटली, व्हाट मोर कैन अ क्रिकेट फ्रेंजी नेशन आस्क फॉर प्रियंका। Holi, the festival of colours, is all about joy, togetherness, excitement and of course unlimited gujiyas and sweets. While you get started with the preparations for the upcoming festival, here we will always be with you every day with a fresh new episode of Parikrama. So let's begin with the news headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से बातचीत करेंगे। वे आज शाम एक सामुदायिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे।
President Draupadi Murmu addresses convocation of Central University of Punjab in Bhatinda, describes the varsity as confluence of various cultures not only from India but also abroad.
सरकार अगले तीन वर्ष में देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेगी।
Center extends duty-free import of urad dal until 31st of March next year.
और खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन हटाया।
And Priyanka, as always, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about Khelo India Winter Games. We have got some exciting news coming your way straight from the breathtaking slopes of Gulmarg, where the fifth edition of the Khelo India Winter Games is heating up with action-packed moments and thrilling performances. In this grand winter spectacle, our athletes are truly showing their prowess. From snow-capped mountains to the cheering crowds, these athletes are putting on a show that's both awe-inspiring and heart-pounding.
खेलो इंडिया गेम्स के इस शीतकालीन संस्करण के लिए हमारे एथलीटों ने अपने खेल को आगे बढ़ाया है और कई स्पर्धाओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। पांचवे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलो जो है वो इस बार दो चरण में हो रहा है। पहला चरण हुआ था गुलमर्ग लेह में और दूसरा चरण अब गुलमर्ग में आयोजित हो रहा है। और पहले चरण में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग की स्पर्धाएं हुई थी। 23 जनवरी से 27 जनवरी तक ये आयोजित हुआ था और दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्की माउंटेनियरिंग, एल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्ड और नॉर्डिक स्कीइंग जो स्पर्धाएं हैं वो आयोजित हो रही हैं। और अनुजा, बता दें कि पहले ये जो दूसरा चरण था वो 22 से 25 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन पर्याप्त बर्फबारी नहीं होने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि जो स्कीइंग है या अन्य खेलों का जो आयोजन इस कारण असंभव ही था, तो जिसके बाद इस खेल को 9 मार्च से शुरू किया गया।
Right, so whether it's skiing, snowboarding or other winter sports, the athletes from Jammu and Kashmir are making sure to take full advantage of the snow-covered peaks of Baramulla district. And their dedication and grit are truly something to celebrate. So if you are anywhere near the action or just listening in, stay tuned as the games continue to unfold. The Khelo India Winter Games are just getting started and who knows what tomorrow will bring. But one thing is for sure, the spirit of competition is as high as ever in Gulmarg.
और आपको बता दें कि खेलो इंडिया गेम्स के बारे में, ये खेलो इंडिया योजना युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में खेलों में सामूहिक भागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यहां तक कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स जैसी प्रमुख प्रतियोगिताओं के साथ धूम मचा रहा है और ये सभी युवा प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें विश्व स्तरीय अवसर प्रदान करने में सफल रहे हैं।
यस प्रियंका, चैप्टर वन ऑफ द विंटर गेम्स विच फोकस्ड ऑन आइस स्पोर्ट्स वॉज हेल्ड फ्रॉम जनवरी 23rd to 27th इन ले एंड दिस इंक्लूडेड थ्रिलिंग कॉम्पिटिशंस इन स्पोर्ट्स लाइक आइस हॉकी एंड आइस skating at three major venues. Following that, the chapter 2, which features snow sports, is taking place in Gulmarg in Jammu and Kashmir and has athletes competing in ski mountaineering, alpine skiing, snowboarding and Nordic skiing. The breathtaking venues include the Kangduri Phase 1 and the Golf Course Club.
और इस प्रतियोगिता में 1200 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कुल 136 पदक दांव पर हैं। इसके अतिरिक्त इस आयोजन में 141 सहायक कर्मचारी, 113 तकनीकी अधिकारी और 250 से अधिक स्वयंसेवक शामिल हैं, जो खेलों के सुचारू संचालन सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसलिए ये सभी लोगों का सामूहिक प्रयास है कि वे जिस भी तरह से कर सके इसे सफल बनाए।
And yes, this year marks a milestone as the Ministry of Youth Affairs and Sports, alongside the Sports Authority of India, is overseeing the technical conduct of the games in collaboration with the National Sports Federations and the ad hoc body of the Indian Olympic Association.
और कांगदूरी स्लोप से बहुत ही रोमांचक खबर है हमारे पास। कौशल और दृढ़ संकल्प के एक रोमांचक प्रदर्शन में महाराष्ट्र के पुणे के सिद्धार्थ गाडेकर ने कल पुरुषों की वर्टिकल स्की माउंटेनियरिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ये जीत रविवार की पिछली जीतों से उनके लगातार बढ़ते पदक संग्रह में जुड़ गई है, जिससे वे स्लोप्स पर एक ताकत बन गए हैं।
But he wasn't the only one to shine bright. Shardul Thapliyal from Himachal Pradesh also grabbed the gold in the same event, keeping the competition fierce and exciting. And turning the spotlight onto the women's category, it was Tenzing Dolma, also from Himachal Pradesh, who clinched her first ever gold medal in the vertical ski mountaineering event. What an inspiring journey for this incredible athlete.
और बिल्कुल अनुजा, अगर आप इनकी बात सुने तो इन एथलीट्स का मानना है कि बहुत अच्छा मंच हमें मिला है और हम चाहते हैं कि हम इन खेलों को आगे ओलंपिक्स तक लेकर जाएं। और नॉर्डिक स्कीइंग स्प्रिंट की बात करें तो आईटीबीपी की टीम ने अपना दबदबा साबित किया शानदार प्रदर्शन करते हुए। कुलसुम राणा ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनकी टीम की साथी सेलमा सोरेंग और अंजना ने रजत और कांस्य पदक हासिल किए। आईटीबीपी ने क्लीन स्वीप किया और वे पूरी तरह से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।
एंड इन द मेंस नॉर्डिक स्की स्प्रिंट द आर्मी एथलीट्स वर आउट इन फुल फोर्स। मंजीत टॉप द पोडियम टेकिंग गोल्ड विद शुभम परिहार राइट बिहाइंड हिम इन सिल्वर एंड सनी सिंह राउंडिंग आउट द मेडल टैली विद ब्रॉन्ज। व्हाट अ स्टेलर परफॉर्मेंस फ्रॉम द फोर्सेस।
लेकिन इतना ही नहीं श्रोताओं, स्नोबोर्ड जायंट स्लालम में ढलानों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के जुबैर अहमद लोन ने अगर देखा जाए तो कोर्स में बिजली की तरह दौड़ लगाई और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सेना के कुलविंदर शर्मा ने रजत पदक जीता, जबकि सेना के ही करण सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया।
इट्स बीन एन इनक्रेडिबल डिस्प्ले ऑफ टैलेंट एंड ग्रेट फ्रॉम आवर एथलीट्स अक्रॉस द बोर्ड एंड वी कुडंट बी प्राउडर ऑफ देम। फ्रॉम द स्टीप स्लोप्स टू द ट्रायंफ्स ऑफ आवर एथलीट्स, दिस इज विंटर स्पोर्ट्स एट इट्स फाइनेस्ट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे वार्म, स्टे inspired and keep cheering for our champions. Yes, the month of March is observed as the Colorectal Cancer Awareness Month. It is rising among men and women. We spoke to Dr. Kartik Sahni of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, and asked him, what are the early symptoms of the colorectal cancer and how to manage and treat it? Let's listen to an excerpt from his interview.
कोलोरेक्टल कैंसर कोलोन और रेक्टम के कैंसर को बोला जाता है। कोलोन और रेक्टम हमारी बड़ी आंत होती है बेसिकली, जिसमें हमारा जो भी हम खाना खाते हैं वो जाके वहां से निकलता है, गुजरता है और रेक्टम में जाके स्टोर होता है, जो लेटरिंग की थैली बोला जाता है। पिछले कुछ डेकेड्स में इसका कैंसर का जो इंसिडेंस है वो काफी बढ़ता जा रहा है, स्पेशली इंडिया में। और जो मेजर कारण बोला जाता है वो है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, इन सब चीजों की वजह से कैंसर का रिस्क काफी आजकल बढ़ रहा है। जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की, अगर आप सिर्फ बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती, मोटापा, आजकल बहुत चलन चल रहा है, लोग कूल बनने के लिए शराब सिगरेट पीते हैं, पार्टीज में जाते हैं, ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जिस तरीके का हम खाना खाते हैं आज की डेट में, जैसे जो प्रोसेस्ड मीट्स आते हैं, या फिर हाई एनिमल फैट डाइट हम खाते हैं, हाई कैलोरी डाइट खाते हैं, लो फाइबर इंटेक डाइट हो गया है क्योंकि हम प्रोसेस्ड मीट खाते हैं, ये सब चीजें हैं जो कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, जैसे कि हमारा रहन सहन, हमारा खान पान। तो हम अगर खाने में रेशे वाली चीजें ज्यादा खाएं, एक टिपिकल हेल्दी इंडियन डाइट अगर हम खाते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि एनिमल प्रोटीन ना हो, तो अगर हम हेल्दी प्रोटीन्स खाते हैं जैसे दाल वगैरह, अगर ये खाते हैं, हमारे खाने में फाइबर का इंटेक अच्छा रखते हैं, शराब नहीं पीते और सिगरेट का सेवन नहीं करें और एक्सरसाइज करें एटलीस्ट आधा घंटा दिन का और हफ्ते में 3 दिन, तो ये सब चीजें हैं कैंसर से हमें बचा सकती हैं। और बाकी रही बात जल्दी पिकअप करने की, तो इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है कैंसर का वो होता है हमारे बावल हैबिट्स में चेंजेस आना। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक नॉर्मल इंसान को दिन में 1 से 3 बार वॉशरूम जाना होता है, अगर इसमें कुछ भी बदलाव आता है कि ऑल्टरनेट डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन की, कभी कब्ज हो जाता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, या फिर हमारे स्टूल का जो कैलिबर होता है वो छोटा हो जाना, टिपिकली बोलते हैं पेंसिल स्टूल, की हमारा जो लेटरिंग है वो पतली होके आ रही है बिल्कुल पेंसिल की तरह, या फिर लेटरिंग में खून आ रहा है, तो ये सब चीजें ऑमनियस साइंस हैं कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और एक कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। जिस टाइम पे, ऐसा स्टडीज बताती हैं कि जिस टाइम पे कैंसर डिटेक्ट होता है उस टाइम पे सिर्फ 20% लोगों को मेटास्टैटिक डिजीज, मतलब कि स्टेज 4 डिजीज होता है, जिसका सर्वाइवल बहुत ही पुअर है, 5 ईयर सर्वाइवल हार्डली 10 से 12% है। तो अगर हम उसे जल्दी पिकअप कर लें और जल्दी सर्जरी करा दें, बट रही बात रेक्टल कैंसर की, तो उसमें पहले कीमो रेडियोथेरेपी दिया जाता है, फिर सर्जरी किया जाता है, तो उससे हम अपनी जो कैंसर को हम मात दे सकते हैं, और अर्ली स्टेजेस में अगर कैंसर पकड़ा जाए तो उसका सर्वाइवल काफी अच्छा है।
और अब समय है अपने संवाददाताओं से जुड़ने का।
राइट, एंड वी फर्स्ट टेक यू टू मिजोरम वेयर चापचरकोट, द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द मिजो पीपल, वाज सेलिब्रेटेड ऑन 7th ऑफ मार्च अक्रॉस द स्टेट विद ट्रेडिशनल फेवर एंड एंथुसियाज्म। चापचरकोट इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द मंथ ऑफ मार्च आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ देयर मोस्ट आर्डुअस टास्क ऑफ झूम ऑपरेशन।
बिल्कुल, मिजोरम का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है चापचरकुट, और ये एक तरह का कृषि त्योहार है, और वहां पर इस दौरान महिलाएं हैं या सब हैं जो चिराव और चाय नृत्य करती हैं, तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है देखने को। इस बारे में अधिक जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता से।
Chapcharkut, the biggest festival of Mizoram, has been celebrated since time immemorial. The festival brings people together across all sections of society and fosters the spirit of love and unity. Chapcharkut signifies and honors the dignity of labor, and it is celebrated marking the completion of the Jhum operation. Chapcharkut also brings alive the cultural richness of the Mizo people. Chief Minister Lal Duoma attended the state-level celebration at Lamual in Aizawl as Kutpa. A large number of Kutars attended the celebration with enthusiasm and festivity. Chapcharkut, rooted in Mizo traditions, signifies the period when farmers take a break after clearing forests for jhum, slash and burn cultivation. While widely celebrated in Mizoram, it also resonates with Mizo communities worldwide. Chapcharkut is celebrated not only across Mizoram and neighboring countries and states, but also wherever the Mizos are present around the globe. It is a festival connected with the traditional slash and burn way of hill cultivation of hill people. Cultural dances including chero, a typical Mizo dance performed with bamboos, traditional dances of different Mizo subtribes, ponto, or sportive traditional children play, singing traditional songs and other performance mark the day. In recent years, Chapcharkut has gone beyond borders and goes global. With a perfect blend of tradition and modernity, Chapcharku 2025 concludes on a high note with reaffirming its significance in Mizo identity and culture. For Parik Rama, this is Isaac from Akashvani Aizawl.
अनुजा, हमारे देश में देखा जाए तो साल भर कोई ना कोई त्योहार पर्व आयोजित होते रहते हैं.
That's the beauty of our nation.
बिल्कुल, यही एक बहुत ही सुंदर संगम है और सबको एकजुट करके रखता है. और अगर रुख करें देवभूमि हिमाचल प्रदेश का, तो अपनी सांस्कृतिक विरासत, देव संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है ये राज्य. और वर्ष भर यहाँ धार्मिक तथा सांस्कृतिक मेलों और पारंपरिक त्योहारों का आयोजन होता है. मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव त्योहारों में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है. धार्मिक आस्था और देव संस्कृति का प्रतीक यह महोत्सव सैकड़ों देवी देवताओं का महासंगम है, जो देश दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है. पिछले दिनों मंडी का 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 27 फरवरी से 5 मार्च तक मनाया गया. इस बारे में अधिक जानकारी है हमारे संवाददाता रितेश के पास.
छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध मंडी में आयोजित 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में देव आस्था के महासंगम के साथ साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सांस्कृतिक विरासत भी एक ही मंच पर देखने को मिली. 27 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ महोत्सव का शुभारम्भ किया और शोभा यात्रा में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने मंडी में शिव धाम के निर्माण के लिए 100 करोड़ रूपए देने की घोषणा की और कहा कि इस शिव धाम का निर्माण 2 वर्षों के भीतर कर दिया जाएगा. 7 दिनों तक चले शिवरात्रि महोत्सव में 350 से अधिक देवी देवताओं ने जिला प्रशासन व छोटी काशी की मेहमान नवाजी का आनंद लिया. इस दौरान 50,000 से अधिक देवलुओं और लाखों लोगों ने इस देव आस्था के महाकुंभ में पहुंचकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की. अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने अपनी संस्कृति से लोगों को रूबरू करवाया. इस दौरान यूक्रेन, श्रीलंका, कजाकिस्तान, वियतनाम से आए कलाकारों ने अपनी कला के जरिए सभी का मन मोह लिया. इस बार शिवरात्रि महोत्सव में पहली बार महाशिवरात्रि की संध्या पर ब्यास नदी के किनारे प्रशासन द्वारा हरिद्वार, काशी व प्रयागराज में गंगा आरती की तरह ब्यास आरती का आयोजन किया गया. 5 मार्च को राजा माधव की अंतिम शाही जलेब के साथ ये महोत्सव सम्पन्न हुआ, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल सहित नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने देवी देवताओं संग शिरकत की. परिक्रमा के लिए शिमला से मैं रितेश कपूर.
And now we go to Bengaluru, where the Bengaluru Metropolitan Transport Corporation has won the prestigious National Public Bus Transport Excellence Award for its initiatives under the Digital Practices category. The innovative Metro Feeder QR code services introduced by Bengaluru Metropolitan Transport Corporation has fetched it the award presented by the Association of State Road Transport Undertakings. We have more on this from our correspondent.
The Bengaluru Metropolitan Transport Corporation introduced the innovative Metro Feeder QR code services to enhance convenience and digital engagement for the commuters. The QR code allows the passengers to easily access bus services that connect with metro stations. Integrating QR code into the ticketing process has created convenience for the passengers to make digital payment while commuting in the city bus. It also helps them to have an easy access to bus schedules, real-time tracking of buses flying in their routes as part of mobility solutions. The award is announced by the Union of State Road Transport Organization that is formed with the membership of 62 state road transport organizations in the country. The union works as per the directives of the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India. BMTC was recognized by the union for introducing modern and advanced technologies to improve the service delivery. BMTC was presented the award by retired IPS officer and former governor of Tamil Nadu, Dr. Kiran Bedi in New Delhi on March 8th as part of International Women's Day. The Assistant Traffic Superintendent, Systems Section of BMTC, Ashoda BS, received the award on behalf of BMTC. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
And now coming to the business news of the day, the benchmark domestic equity indices today reversed initial losses and ended almost flat despite global cues being very weak amid recession fears in the US and tariff concerns. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, fell marginally by nearly 13 points to close at 74,102. However, at the National Stock Exchange, Nifty 50 rose 37 points or 0.17% to settle at 22,400.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में आज मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा और अगर मुंबई ये मैच जीत जाती है तो अंक तालिका में शीर्ष पर वह रहेगी और उसे सीधा फाइनल में प्रवेश मिलेगा.
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Today we remember Sayaji Rao Gaikwad III, who was born on 11th March 1863. He was the Maharaja of Baroda State from 1875 to 1939. Merely months after acquiring full powers, he opened 8 schools for girls and a training college for women teachers in 1881. The Maharaja Sayaji Rao University of Baroda, which runs even today, was also opened in 1881. His tenure saw the abolishment of infant marriage, legalization of widow remarriage, and the introduction of free and compulsory primary education in 1893.
Sayaji Rao was also a supporter of abolition of caste differences.
It is well known that his patronage brought forth some of the best talents of the time. The most well-known example is Raja Ravi Varma, who had his first exhibition at the Baroda Palace. He is also famously known for sponsoring Dr. B.R. Ambedkar's college education abroad. He also sent financial assistance to famous social reformer Jyotirao Phule.
Sayaji emphasized upon the development of railway network within his state, construction of water systems, and the strengthening of commercial banks. He founded the Bank of Baroda in 1908.
Sayaji Rao supported Bal Gangadhar Tilak, as also extended his public support to Mahatma Gandhi and the Indian National Congress. The British despised his apparent disinterest in showing allegiance to the crown and feared his actions. In fact, in a famous incident in 1911, when the British King George V came to Delhi, Sayaji Rao was criticized by the British for deliberately turning his back to the British monarch. After a long and eventful reign of 63 years, Sayaji Rao Gaikwad III died on 6 February 1939. We salute the great Indian.
Today, we also remember the independence activist Chandrabhanu Gupta. He was born in District Aligarh in 1902. Gupta joined the Indian independence movement at the age of 17 when he took part in demonstrations against the Rowlatt Act in Sitapur.
Chandrabhanu, along with his associates, planned to break the salt law in Lucknow. They gathered at the Gunge Nawab Park in the Aminabad area of Lucknow. At the park, they broke the salt law.
The British police arrested them. After the trial, Chandrabhanu Gupta and his associates were sent to jail. Post-independence, Chandrabhanu Gupta served 3 terms as the Chief Minister of Uttar Pradesh. He breathed his last on the 11th of March 1980 at New Delhi.
To the birth anniversary of Madan Singh Matwale, who was born in the princely state of Hyderabad in 1925. He fought for the independence and unification of Hyderabad with India.
Madan Singh had his first confrontation with the Riyasat of Hyderabad when the Arya Samaj started a movement against the princely state. Success of this movement encouraged Madan Singh and he jumped into the movement which was aimed for the merger of Hyderabad state with the Indian Union.
On 14th August 1948, Madan Singh hoisted the Indian flag at his home. The police of Hyderabad state wanted to take down the flag, but Madan Singh fought hard. The barbaric officers dragged him and took him into custody. Madan Singh Matwale died due to the police torture. We salute the brave son of the soil.
और अब याद करते हैं जानी मानी हस्तियों को। अनुजा, शुरुआत में हमने कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस की बात की थी और अब हम जिस हस्ती को याद कर रहे हैं वो एक ऐसी डॉक्टर है जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कैंसर के मरीजों की सेवा में लगा दी। वो महिला जिसने भारत में कैंसर के इलाज को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, जिनका एक ही मकसद था कि भारत में कैंसर को लेकर लोग जागरूक हों और लोगों को बेहतर और किफायती इलाज मिल सके। जी हाँ, विश्वनाथन शांता यानी वी शांता की आज जयंती है।
राइट, शी प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट व्हिच शी वाज द चेयरमैन ऑफ द कैंसर इंस्टीट्यूट व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विमेंस इंडिया एसोसिएशन इन चेन्नई एंड इन द इनिशियल ईयर्स शी हैड अ हार्ड टाइम बट द एक्साइटमेंट ऑफ वर्किंग साइंटिफिकली इन अ कोलैबोरेटिव स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी केप्ट हर गोइंग। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑनर्ड हर विद ऑल द थ्री पद्म अवार्ड्स, पद्मश्री इन 1986, पद्म भूषण in 2006 and Padma Vibhushan in 2016. She also received the Asian Nobel, the Raman Magsaysay Award for Public Service in 2005.
और जिस परिवार में वी शांता का जन्म हुआ उस परिवार के दो महान वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं, विज्ञानी एस चंद्रशेखर और उनके मामा थे और सीवी रामन नाना के भाई थे। और आपको बता दें कि वी शांता ने 2019 में एक साक्षात्कार में कहा था कि हमने 12 पलंग, दो डॉक्टर्स, दो नर्स, दो टेक्नीशियंस, दो सेक्रेटेरियट स्टाफ के साथ एक कॉटेज अस्पताल के तौर पर शुरुआत की थी और आज गर्व है कि हम देश के अच्छे इंस्टीट्यूट्स में शामिल है, क्योंकि उन्होंने 1955 में अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट में योगदान दिया, उसकी अध्यक्ष रही और देश में पहले शिशु कैंसर क्लिनिक की स्थापना भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी।
राइट, एंड टुडे वी आल्सो पे ट्रिब्यूट टू सुदर्शन साहू हु इज एन इंडियन स्कल्पचर आर्टिस्ट फ्रॉम उड़ीसा। ही वाज अवार्डेड इंडियाज सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण इन 2021 एंड आल्सो पद्मश्री इन 1988। साहू एस्टैब्लिश्ड सुदर्शन क्राफ्ट्स म्यूजियम इन पुरी इन 1977 and Sudarshan Arts and Crafts Village in Bhuvaneshwar in 1991 with the help of the government of Odisha. He received the National Award for Stone Carving in 1981.
और जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी विजय हजारे की आज जयंती है। वे 1951 से 1953 के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को टेस्ट क्रिकेट में प्रथम सफलता दिलाई थी। विजय हजारे द्वारा एडिलेड ओवल में सबसे यादगार पाली खेली गई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1946 की श्रृंखला का चौथा टेस्ट यहीं खेला था और इस टेस्ट मैच में भारत की पारी तथा 16 रन से हार हुई, लेकिन हजारे ने दोनों पारियों में शतक लगाए, पहले में 116 और 145 रन दूसरे में, और ऑस्ट्रेलिया के उस देश में अपने हजारों प्रशंसक बनाए अपनी ये पारी खेल के, और 1960 में उन्हें पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया था और उन्हीं के नेतृत्व में भारत ये टीम को पहली जीत हासिल हुई थी। भारत के लिए 30 टेस्ट की 52 पारियों में विजय हजारे ने 7 सेंचुरी और 47.65 के औसत से कुल 2192 रन बनाए।
Right, and another personality we pay tribute to.
बिल्कुल, शायर हैं जाने माने हस्तीमल हस्ती। उनका जन्म 11 मार्च 1946 को राजस्थान के आमेर जिले के राजसमंद में हुआ था और उनकी अगर देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत आपको एक मुखड़ा सुनाते हैं। खेल जिंदगी के तुम खेलते रहो यारो, हार जीत कोई भी आखिरी नहीं होती। उन्होंने कई गजलें लिखी और काव्य संग्रहों में उनकी रचनाएं प्रकाशित है, लेकिन एक उनकी काफी मशहूर गजल है जिन्हें जगजीत सिंह ने गाया है, आइए सुनते हैं।
प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को वक्त तो लगता है, प्यार का पहला।
Music singer, composer, Bollywood playback singer and the voice of romance in Hindi films, Mohit Chauhan has his birthday today. Mohit Chauhan is a well-known Indian pop singer for the band Silk Route. He's also known for his work as a playback singer in Bollywood movies. He's proficient in playing guitar, saxophone, flute and harmonica. A singer of mushy romantic ballads, the song Masakali for the film Delhi 6 won Mohit a Filmfare Award for the Best Male Playback Singer in 2010.
जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक उड़ डगर डगर कस्बे कूचे नुक्कड़ बस्ती में ये इतड़ी से मुड़ अदा से उड़।
In 2011, his songs for the movie Rockstar became anthems, and this was also the year that he sang Bengali songs for the first time.
और बहुत ही खूब था मसकली गीत और हमारे भी उड़ने का समय आ रहा है. समय कह रहा है अपने श्रोताओं से अनुमति ली जाए तो प्रियंका अरोड़ा और अनुजा कुमार को दीजिए इजाजत कार्यक्रम संपन्न करने की. नमस्कार.